मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो रड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। आज फिर से एक ऐसी महान विभूति हमारे सामने है जिन्होंने इसी मधुबन की धरनी पर साकार मात पिता की गोद ली, उनकी पालना ली और यहीं पर आपने तपस्या करके यज्ञ को अपनी आंखों से फलते फूलते देखा भी है और उसमें शुरू से अपना दाहिना हाथ दिया भी है। ऐसे यज्ञ के पिलर विशेष आदरणीय भ्राता अमित चंद भाई जी का हम एक हाथ की ताली से दिल से अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय भ्राता अमित चंद भाई जी, आप पंजाब जोन के डायरेक्टर हैं और सोशल सर्विस विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। वर्तमान समय भ्राता जगदीश जी के खरीदा हुआ स्थान सोनीपत में जो मोरथल में बना हुआ है अभी रिट्रीट सेंटर बन रहा है, विशेष आपकी ही वो रचना कहें, इतना सुंदर स्थान कभी वो भी आप देखेंगे। वहां पर भी पूरे जोन की सेवाएं, भट्टियां और अनेक तरह के कार्यक्रम का आप कुशल रूप से संचालन करते रहते हैं। आपकी विशेषता है बड़े गुहे से गुहे विषय को बड़ी रमणीकता से और सहजता से गहराई से समझा देना और भाई बहनों का सीधा योग बाबा से लगवाना, डायरेक्ट बाबा से मिलन कराना, सबको ईश्वरीय मर्यादाओं से जोड़ना और सरल चित होकर सबके साथ व्यवहार करना, ये आपकी बहुत बड़ी खूबियां हैं। तो आज विशेष तौर पर निर्विघ्न स्थिति क्या होती है, कैसे बनाई जा सकती है, इस पर हम आदरणीय भ्राता जी से समझेंगे। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। यहां तो सब निर्विघ्न है, निर्विघ्न स्थिति का अनुभव हो रहा है ना यहां पर। भाई भी बहुत छोटी उम्र के भी सोफों पर बैठे हुए हैं, ये भी जमीन पर बैठना भी कई दहवीगन लगता है ना उनको। माताएं देखो यहाँ पर आगे आगे बैठी हुई हैं और भाइयों की सारी आगे जगह खाली है। नहीं, आगे बैठने में साकार बाबा के दिनों में उस दिन मैंने सुनाया कुर्सियां होती ही नहीं थी, सोफे होते ही नहीं थे, सब जितने भी थे सब बड़े बड़े सब नीचे ही बैठते थे। साकार बाबा के दिनों की एक बात मुझे याद आई, डॉक्टर एल एस माथुर दिल्ली के, अभी तो उन्होंने शरीर काफी समय पहले छोड़ दिया, पहले वीआईपी व्यक्ति जो कि अपनी कार से मधुबन आया था दिल्ली से, क्योंकि वो ट्रेन में चढ़ नहीं सकता था, टांग को फ्रैक्चर हुआ हुआ था उनका, हेड ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारी न्यूयॉर्क की मोनी बहन है उनको ने उसको कोर्स कराया था और वही उनको लेकर के आई थी बाबा से मिलाने। पहला व्यक्ति जो बाबा के सामने हिस्ट्री हाल में कुर्सी पर बैठा, वो नहीं बैठना चाहता था, मैं नीचे ही बैठूंगा, जिद करता था। बाबा ने कहा देखो बाबा आपको कह रहा है, क्योंकि उसकी तो चलता भी लाठी से था, पहला व्यक्ति जो बाबा के सामने हिस्ट्री हाल में उसके लिए कुर्सी मंगवाएगी, कुर्सी पर बैठा, कुर्सियां होती ही नहीं थी, सब चौकड़ी लगा के बैठते थे, बड़ा मजा आता था, बड़ी बड़ी दादियां सब लोग बाबा के सामने। इसलिए ये भी बहुत अच्छा है कि कोई बैठ सके। हाँ, ये भी हम कहते हैं कि जिनकी तबीयत वाकई ऐसी है तो उनको बैठने में कठिनाई हो तो नहीं बैठना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैठे हुए संकल्प चल रहा है कि वो तकलीफ हो रही है तो मन उसको खींच रहा है, शरीर की तकलीफ भी मन को खींचती है, फिर एकाग्रता नहीं होती। अच्छा, आज का जो विषय है निर्विघ्न स्थिति, क्या होती है निर्विघ्न स्थिति वो तो कहने की जरूरत नहीं है। निर्विघ्न, विघ्न ना हो, निर्विघ्न का मायना ही है जो विघ्न ना हो, कोई भी विघ्न ना हो। अब ऐसी स्थिति तो यहां होगी, संगम युग है, कलयुग का अंत है, निर्विघ्न स्थिति के लिए ही तो हम सब यहां बैठते हैं। रोज क्या कर रहे हैं, रोज हम जो बैठते हैं ज्ञान योग की स्टडी कर रहे हैं, निर्विघ्न जो हमारी सदा काल की स्थिति निर्विघ्न बन जाएगी और वो है सतयुग। सतयुग में कोई विघ्न होता ही नहीं। यहां जो है ये दुनिया जो है, या जिस स्टेज पे हम पहुंच गए, दुनिया भी नहीं, ये दुनिया भी किसने बनाई, जिसे कलयुग हम कहते हैं, तो कलयुग को कलयुग क्यों कहा गया, सतयुग को सतयुग क्यों कहा गया और कलयुग को कलयुग क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा की जो स्टेज है धीरे धीरे तमोगुणी हो गई, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण से धीरे धीरे हमारी स्टेज ऐसी होगी, इसलिए इसको कलयुग कह दिया। आत्माओं की जो स्थिति है उस अनुसार युग का नाम पड़ जाता है, इसलिए हम कलयुग कहते हैं। तो कलयुग में तो लास्ट स्टेज में हम पहुंच गए ना, लास्ट में, तो लास्ट में पहुंच गए तो आप ये सब बाबा ने समझ दे दी है, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, सब समझ हम बच्चों को कि हमारी स्टेज ऐसी जब बन गई लास्ट में तो कितना द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता चलो छोड़ दो, द्वापर कलयुग से लेकर के आत्माओं ने कितने संबंधों में हम आए, कितने व्यक्तियों के साथ संबंधों में आए, कितने हमारे कार्मिक अकाउंट बन गए, कर्मों के हिसाब किताब 84 जन्म में से 20 जन्म निकाल दो, बाकी इतने जन्मों तक हम लोग एक दूसरे के दैहिक संबंधों में रहे हैं ना, हम वो कैरी फॉरवर्ड होता चला गया अकाउंट हमारा। बाबा कहता है उसके आधार पर फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, कितनी आत्माओं के साथ हम संबंधों में आए, क्या क्या कर्म किए, और वो भी सारे ज्ञान के नहीं अज्ञानता के कर्म किए, दैहिक अभिमान में आके किए, समझ ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी, ज्ञान था ही नहीं। हाँ, ये आत्मा के अंदर जो संस्कार है सच्चाई का, उसके आधार पर आत्मा ने जो हमारी स्टेज रही थी सतयुग त्रेता में, तो अंदर स्मृति में तो है ना, आत्मा में, बाबा कहता है 84 जन्मों का पार्ट है, आत्मा के अंदर भरा हुआ है, तो हमें अंदर वो अंदर आत्मा को अंदर में आता है। जैसे कोई बहुत बड़ा राजा हो या बहुत बड़ा पैसे वाला हो, कोठियों में रहता हो, बंगलों में रहता हो, बड़ा अच्छा ठाठ बाट से रहता हो, फिर कुछ कारण बने कि उसका कारोबार खत्म हो जाए, एकदम मिलियनेयर से आकर के एकदम पट पर गिरे आकर के, तो उसको याद तो आएगी ना, अभी मकान के किराए में रह रहा है, और क्या उसकी कोठी थी, मिलियनेयर था। एक ही जन्म में कई बार ऐसा हो जाता है तो उसको याद तो आती है ना कि मेरी क्या स्टेज थी। ऐसे ही हम आत्मा के अंदर वो स्मृति तो है ना, अंदर आती है। और जब अपनी उस ऊंची स्टेज से हम नीचे आ जाते हैं और हमें पता है कि ऊंची स्टेज क्या है, मगर अभी हमारी है नहीं, इसलिए फिर क्या करते हैं, द्वापर से लेकर के जब नीचे स्टेज आनी शुरू हुई, फिर भक्ति मार्ग आरंभ हुआ। भक्ति मार्ग में ना भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या करने लगे प्रार्थना? कि हमारी वो स्टेज बने। इसलिए पहली पहली बात क्या कही भगवान को हमने सब ने, पहली पहली बात विषय विकार मटाओ। पहली पहली बात, पैसे कोड़ी की बात बाद में है। जो असली भगत थे, असली भगत जो सच्चाई वाले भगत होते हैं, वो पैसे वैसे के लिए नहीं। असली जो स्टेज थी उसकी, उससे वो नीचे आ गई ना आत्मा, प्योरिटी से इम्प्योरिटी में आ गई। इसलिए ईश्वर को भक्ति आरंभ हुई जब, तो पहली पहली बात विषय विकार मटाओ। विकार शुरू हुए ना, द्वापर में विकारों की स्टेज क्या थी, वो भी सतो प्रधान। वो विकारी क्या स्टेज होती है, अभी भी मैं सुनाता हूं कि मैंने जब कॉलेज में पढ़ता था मैं, तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जिंदर प्रसाद, जो पुराने हैं उनको याद हो पता होगा कि भारत जब आजाद हुआ तो पहले पहले राष्ट्रपति जो बने डॉक्टर जिंदर प्रसाद, उनकी एक किताब है, अभी भी आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर जिंदर प्रसाद की, वो मैंने पढ़ी है। उसमें उन्होंने विचित्र बात लिखी है, ये कलयुग के अंत का देखो सी अंत का समय है। उन्होंने लिखा कि दो बच्चे मेरे हो गए, मेरे अपने युगल की शक्ल नहीं देखी। देखो आप क्या स्टेज है, आप देखो। फिर उसने बहुत गहराई से उसमें लिखा उसने कि मैं अपनी युगल के पास विकार के लिए सिर्फ बच्चा जब जरूरत होती तब जाता था, तब हमें ले जाया जाता था। उसने ये लिखा है। कितना कंट्रोल्ड लाइफ के अंदर था, आप देखिए अंदाजा लगाइए। संतान के लिए एक बार जैसे कि युगल के पास जाना बस, और शक्ल नहीं। वो तो बहुत विस्तार से लंबी कहानी है, मगर मैं अब ये बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग कलयुग के अंत में भी हुए जिन्हों का इतना सेल्फ कंट्रोल हुआ करता था। बड़ी भारी शक्ति मानी जाती थी ब्रह्मचर्य की शक्ति, बड़ी भारी शक्ति मानी जाती थी। जब ये चीज डाउन हुई, इससे क्या नुकसान हुआ जो विघ्न के साथ जिसका संबंध है। विकार में जैसे व्यक्ति गया, उसकी ये जो शक्ति अंदर खत्म हुई, तो डायरेक्ट इफेक्ट आया उसकी आत्मा के अंदर, कमजोरी आई। आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। कमजोर आत्मा की कमजोरी में ना ये तीनों शक्तियां कमजोर होनी शुरू हो गई। उसके संकल्प श्रेष्ठ नहीं रहे और निर्णय शक्ति सतोगुणी नहीं रही। बुद्धि ये गिरावट है। ये जो निर्णय शक्ति है ना, निर्णय शक्ति बुद्धि किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति गलत काम करता तो क्या कहते हैं? इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कई दफा कहते इतनी भी बुद्धि नहीं है, बुद्धि में ना समझ, विजडम अंग्रेजी में कहते इतनी भी समझ नहीं है। आत्मा के अंदर सबसे जो श्रेष्ठ शक्ति है वो है बुद्धि। जैसे विकार में गए बुद्धि कमजोर हो गई, मैं ना निर्णय शक्ति प्रॉपर काम नहीं करने लगी। जैसे आंखें तो होती हैं, कहते अब दिखाई नहीं देता, फिर चश्मा लगा लेती। कमजोर हो गया ना, फिर उसको मदद की जरूरत होती है। ऐसे ही ये जो बुद्धि है, अब ये तो आंखों को तो चश्मा लगा लो, बुद्धि को क्या करो। इसलिए कई लोग बता अपने हंसी में कहते हैं, चश्मा लगाते लगाते ना कहीं ऊपर कर लेते हैं, है ना भाई, वो कहते हैं ऊपर उसको जरूरत है। वो कहते हैं इसकी आंखें नहीं ऊपर कमजोर है, इसलिए चश्मा ऊपर रखता है ये। तो ये जो कमजोरी के कारण चश्मा लगाते हैं ना, अब बुद्धि को कैसे ठीक करें। और ये जो विघ्न जो है, विघ्न का संबंध इसके साथ है। विघ्न वास्तव किसे विघ्न कहते हैं, आप देखिए, एक दो बच्चे पेपर देने गए, उनको टेस्ट पेपर दिया गया, पेपर दिया गया, एक मौज से फटाफट कर रहा है, खुश हो रहा है, मैं तो फर्स्ट स्टैंड करूंगा, सारे पेपर मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हो गए। दूसरा रो रहा है, क्या कारण, क्या किस चीज का कारण है, कि वो क्वेश्चन सॉल्व करना जानता है, उसने तैयारी की हुई है, क्वेश्चन सॉल्व करना जानता है, उसके लिए खेल पाल है। वो तो कहता मैं स्कॉलरशिप लूंगा, मेरा तो अखबार में नाम छपेगा, वो तो खुश हो रहा है। और दूसरा टेस्ट से घबरा रहा है क्योंकि तैयारी नहीं है, उसके लिए विघ्न है, उसके लिए खेल पाल है। वही कोई सर्कमस्टांसिस आर द सेम, परिस्थितियां वही होती, एक जैसी होती हैं, कईयों के लिए विघ्न होता है, कईयों के लिए खेल पाल होता है, कुछ भी नहीं, सेम सर्कमस्टांसिस, सेम सब चीजें, क्यों, उसके अंदर ताकत नहीं। एक छोटा सा इतना को है जिसको छलांग लगा के आप पार कर सकते हो, खुदाई की हुई है, आपने सिर्फ छलांग लगानी है, जिसको जिसके अंदर शरीर में ताकत है उसको क्या तकलीफ है, और दूसरे के लिए विघ्न है। एक्चुअली क्या चीज है, आप जिसको समझिए अंदर मैं क्या कहना चाहता हूं, विघ्न परिस्थितियां नहीं है, हमारे अंदर जो ताकत है वो विघ्न नजर आता है। सर्कमस्टेंस आर द सेम, एक के लिए विघ्न है, एक के लिए खेल पाल है, क्यों, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, अपने अंदर वो ताकत नहीं है, जो मेरे सामने चीज आई है उसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो मुझे विघ्न लगता है। और एक है उसको सॉल्व कर लेता है, कुछ भी नहीं, फिर क्या ठीक। इसलिए जो निर्विघ्न स्थिति का ये मायना नहीं है कि विघ्न ही ना आए, वो तो सतयुग है। फिर ये जहां हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, जिस हालात में हम रह रहे हैं, जिस प्रकृति तत्वों में हम रह रहे हैं, ये तो तमोगुणी है सारे ही, कलयुग के अंत में है। और जिन्हों के साथ रह रहे हैं उनके भी हमारे हिसाब किताब है, कई जन्मों के इकट्ठे हो गए आ गए, कोई पति बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई बेटी बन गया, कोई बेटा बन गया है, तो ये वो तो हिसाब किताब वाले हैं सारे। ये पहली मुलाकात नहीं है, ये नजर आता है, हर सीन पुराना है लगता नया नया लगेगा, बेटा मेरा बेटा हुआ है, अरे ये नहीं, ये तेरा परदादा आया है। कोई हो रहा है, नाच रहा है, बेटा है। ये तो हिसाब किताब ले रहे आके और दे रहे, खुश हो रहे उसको दे करके, उसकी सेवा करके, ये करके, कितना खुश होते हैं। जरा भी रात को तकलीफ हो जाए उठ के बैठ जाएंगे, हैं? एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है, इतना खुशी से करती है, बड़ी प्यार से करती है, हिसाब किताब उन्हें दे रही है उसको। वो लेने आया है उसको दे रहे हैं प्यार से, क्योंकि उसका हिसाब किताब है। इसलिए अंदर में ये क्या चीज को समझने की जरूरत है, दीज आर ऑल कार्मिक अकाउंट, कुछ भी नहीं। हमें ये लगता है ऐसा। अब आप देखिए, कई मेरे पर कई आते हैं, कहते हैं ये ऐसा है, सबको प्यार करता है, मेरी शक्ल देख के ऐसे कर लेता है, मुझे नहीं प्यार करता, ऐसे कहीं कहते है? मैं कहता हूं मेरी बहू है, मेरी फलाना है, मेरा वो है, वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, प्यार से नहीं देखते हैं। मैं कहा कईयों को देखते हैं, हाँ कहते कईयों को देखते भी है प्यार, उन्हें कहते प्यार तो है तेरे लिए, कहते मेरे लिए नहीं है। कई ऐसे कहते दुखी होते रहते हैं, कहते देखो अभी हंस रही थी, अभी देखो मेरी तरफ देख के शक्ल बदल ली इसने, दुखी हो जाते, कहते मैं क्या हो गया इसको। फिर मैं उसको एक मिसाल सुनाता हूं, मैं कहता हूं दो लोग गए बैंक में, दोनों ने फार्म भरा 500 रुपया निकालने के लिए, काउंटर पे चले गए, कैशियर ने एक को 500 दे दिया, एक को कह दिया नहीं जाओ जाओ, क्यों क्या बात है, उसके अकाउंट में ही नहीं है, वो उसको प्यार कर रही है क्योंकि उसके लिए उसके पास है, तेरे पास तेरा जीरो है और तू कह रही हो प्यार क्यों नहीं करती। वो प्यार मैंने कहा बैंक वाले से झगड़ा करोगे तो तू पैसा क्यों नहीं देता है, अगर दे भी देगा तो लोन देगा, उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा, अगर जबरदस्ती किसी को क्या प्यार दे, मेरे मीठा बोल रिस्पेक्ट कर ए, वो करेगा कर देगा, और वो लोन की तरह होगा, उसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा क्योंकि खाते में तो है नहीं है। कहते फिर क्या करें, मैं क्या क्या किया जाता है बैंक वाले बैंक में क्या किया जाता है, तेरे अगर पैसे अकाउंट में नहीं है तो जमा कराना शुरू कर दे बस, कोई तुझे प्यार नहीं करता तू उसे प्यार करने लग जा, थोड़े दिनों में वो तुझे प्यार करने लगे क्योंकि उसके अकाउंट में आ गया पैसा उसमें डिपॉजिट आ गया, वो रिटर्न करना शुरू कर देगा, है सिंपल सी बात, जो कितनी सिंपल बात है, और इसको लोग दुखी हो रहे कितने लोग इसलिए दुखी है वो प्यार नहीं करता, वो मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, मैंने बेटा मैंने पेट कैसे पाला, आज बोलता कैसे है, आज देखो बेटा मेरा ही बेटा करता क्या है, वो दुखी हो रहे हैं, विघन है ये उसके लिए विघन है, ये नहीं समझते कि उसके खाते में तेरा ब्लैक हुआ पड़ा तेरा इतना अकाउंट उसके पास तूने उसे लिया हुआ है कि तेरा खाता खाली है, वो क्या कहां से देगा, वो कहां से देगा, वो मीठा बोलना जानता है पर आपको मीठा नहीं बोलता, सिंपल सी बात है, सिंपल सी और कुछ नहीं है, विघन वुगन कुछ नहीं है, ये हमारी सोच है, हमारी बुद्धि की शक्ति है, हम ज्ञान ज्ञान को हम ज्ञानी तो आत्माओं के लिए सब चीजें सहज है, विघन है ही कुछ नहीं, अज्ञानी लोगों के लिए तो कदम कदम में विघन है क्योंकि नॉलेज नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बाबा के बच्चों में विघन नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हम उसका कारण जानते हैं ना, कोई भी बात होगी हम जानते हैं ना, नॉलेजफुल है बाबा का, तो आप नॉलेजफुल हो, ज्ञान को हम अप्लाई करें बस, ज्ञान हमारी बुद्धि में है, हम ज्ञान को अप्लाई करते रहे, कोई भी बात हो अंदर अंदर मनन करें, क्या कारण है ये, क्या कारण, बस आपको समझ में आ जाएगा, ज्ञान को अप्लाई करेंगे कोई भी डिफिकल्टी कोई विघ्न आपको नहीं नजर आएगा, नहीं आएगा उसका कारण, बाबा ने क्या कहा, समस्या रूप नहीं समाधान स्वरूप, क्या माना, चीजें तो आएंगी आएंगी, शरीर के कष्ट भी आएंगे, संबंधों के हिसाब किताब भी आएंगे, प्रकृति तत्वों के भी आएंगे, समाज के भी आएंगे, आर्थिक कंडीशंस भी आएंगे, एक कारण थोड़ा है, कई कारणों से आपके सामने ऐसे हालात बनेंगे जो आपको विघ्न नजर आएंगे, लगेंगे विघ्न कई कारणों से, विघ्न का सब सिंपल सा विघ्न क्यों, विघ्न किसे हम कहते हैं, जो हमारे अनुसार ना हो, हमें खुशी ना देवे, हमारे अनुसार नहीं है, हमें खुशी नहीं देता है, हम कहते ये तो विघ्न है, बस उसको विघ्न समझने लग जाते हैं। उसको हम अप्लाई करें, ज्ञान को अप्लाई करके देखते जाएं। अच्छा क्या बात है, कोई भी चीज आ गई, शरीर का कष्ट आ गया, ज्ञान को अप्लाई कर लो तो ये तो हिसाब किताब है, मेरा ही तो है, फिर क्या है। ठीक है, चलो डॉक्टर के पास जाओ, किसी के पास जाओ, दवाई लो, कुछ ये करो, चलो ठीक है बस करो, उसमें क्या है। शरीर है, वैसे भी नॉलेज है, शरीर जो है सब दिन होतना एक समान, आप कितना भी इस शरीर को ठीक रखे देख रख लो, कर लो, कितना भी कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है, शरीर के रूप में आ जाएगा, संबंधों में आ जाएगा। आप कितना भी कहो मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, मैं ये करती हूं, मैं ये करती हूं, अच्छी बात है करो, ठीक है, पर उसका मैंने ये थोड़ा वैसे ही होगा, उसके आगे की और की चीजें सोचो ना। हम लोग बहुत दूर का बाबा ने ज्ञान दे दिया, बच्चे एक जन्म की बात थोड़ा है, ये तो कई जन्मों का हिसाब किताब है, एक जन्म की बात थोड़ा है, आपने तो इस जन्म में किया है ना, पहले पहले का हिसाब किताब वो आपको पता ही नहीं है। आपको बार बार कष्ट इसलिए हो रहा है कि आपको प्रेजेंट में नजर आता है कि मैंने तो इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, और ये रिटर्न क्या दे रहा है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। नहीं बाबा कहते नहीं, ये हमारे ही अपने सूक्ष्म हिसाब किताब है सब। हां इसमें एक गहरी और बात ये है कि बाबा कहता है कि जो भूतकाल के हमारे कार्मिक अकाउंट हैं वो कठिनाइयां पैदा करते हैं पास्ट के, हमारे ही हिसाब किताब है जो कठिनाइयां पैदा करती हैं। अब कई दफा मैंने देखा कि ज्ञान में चलने वाले क्या पता क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये तो मेरा कोई पता नहीं कब का हिसाब किताब है। अब ज्ञान को कैसे देखो लेने लग जाती है, कहती है मेरा आपको कड़ा हिसाब किताब नजर आता है, मेरा पास्ट का ना बड़ा हिसाब किताब कड़ा, पता नहीं कब निपटेगा, ये है अंदर, समझ रहे हैं, ज्ञान से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर एक बात बहुत ज्ञान में चलने वाले भूल जाते हैं, वो भूतकाल को समझते पहले जन्मों की बातें। मैं कहता हूं नहीं, आज से 15 मिनट आधा घंटा पहले भी जो आपने अगर कुछ उल्टा बोला है वो भी भूतकाल है, वो भी भूत है, भूतकाल भूत। अगर आपने अभी भी किसी से ठीक नहीं व्यवहार किया, बाबा कहता है वचन कर्म तो छोड़ो, अभी लेट डेटेस्ट बाबा कहता है मनसा में भी, आपके मनसा में भी किसी के लिए गलत विचार आया, ये आपका हिसाब किताब जुड़ गया, फिर देना पड़ेगा आपको। आपने क्यों गलत सोचा किसी के लिए, बाबा ने क्या कहा, हर के लिए क्या सोचो, बाबा की श्रीमत क्या है, सबके लिए श्रीमत क्या है। जब भी किसी को देखो, किसी के संबंध में आओ, किसी से बातचीत करो, तो क्या क्या समझ के करो, उसके आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति में रह के उससे बात करो, आदि और अनादि, वर्तमान नहीं। वर्तमान में हो सकता है कि उससे आपको झगड़ा हुआ हो सकता है उसका बोल कड़वा हो सकता है उसके एक्शन ठीक ना हो, वर्तमान तो आत्मा के अंदर कई चीजें हो सकती है ना, कलयुगी संस्कार है। अगर आप वर्तमान को देख के किसी से व्यवहार करोगे तो विघ्न बढ़ेंगे आपके, घटेंगे नहीं, क्योंकि हर घड़ी आप सोचते रहोगे कमाल है ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, उसकी नेगेटिविटी आपको प्रभावित करती रहेगी, उसकी नेगेटिविटी उसके अंदर है नेगेटिविटी, पर वो आपको प्रभावित करती रहेगी और आपके सूक्ष्म हिसाब किताब बनाती रहेगी। अगर आपने किसी के लिए गलत सोचा, बोला तो बोला, और वो तो कर्म बाद की बात है, किसी के लिए मैंने गलत सोचा, उस आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब जुड़ गया, और आप कहोगे मेरा हाथ हिसाब किताब तो खत्म ही नहीं होता, खत्म नहीं होता, बढ़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में मेरी सोच उस आत्मा के लिए कैसी है, क्या बाबा के अनुसार है, वो कैसा भी है, सबसे बड़ी जो ब्राह्मणों में एक कठिनाई पैदा होती है, मैं जो महसूस करता हूं सबसे बड़ी, कि हम हर एक को उसके वर्तमान स्वरूप को देख के उसे प्रभावित होते रहते हैं, और वो है नेगेटिव। जो वो आज है आत्मा ही समय पर है, वो आत्मा तमोगुण से प्रभावित है, बाबा ने बता दिया। कोई भी संपन्न कोई बना नहीं है, किसी के अंदर 100 गुण होंगे तो एक आदि कोई नेगेटिविटी भी होगी। अगर हम उसकी नेगेटिविटी का चिंतन करते हैं या उसके नेगेटिव को मन बुद्धि में रख के व्यवहार करते हैं तो हमारा किस खाते में जाएगा, उसके साथ कार्मिक अकाउंट और बन जाएगा, क्योंकि तो बाबा की मन है, श्रीमत नहीं है जी। इसलिए निर्विघ्न स्थिति जो बनेगी या कोई विघ्न नहीं रहेगा, उसका जो सूक्ष्म पुरुषार्थ है, सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि कोई कैसा भी है, उसका गुण कर्म स्वभाव कैसा भी है, उसका व्यवहार कैसा भी है, आपके लिए या दूसरों के लिए आपको क्या करना है, अब ये है विचार। आपने जो हिसाब किताब को बढ़ाना है, खत्म करना है, क्या करना है, ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में। अब पहले का है, मगर अब मैंने क्या करना है, मैंने उसको बढ़ा सकता हूं, कम कर सकता हूं, दोनों मेरे हाथ में। इसलिए बाबा ने कहा है, ज्ञानी तो आत्मा के मुख्य 2 गुण जो हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान देवे तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। 2 गुण, एक धीरज, एक शांति। कुछ भी हो जाए ये गुण जैसे ही खत्म होते हैं कठिनाई पैदा करते हैं। धीरज और शांति, कुछ भी हो जाए। अच्छा, किसी कोई उल्टा बोल रहा है आकर के, उल्टा बोल रहा है। उस वक्त सबसे बड़ा उस वक्त कठिनाई है कि धीरज शांति रहती है। अगर ये 2 चीजें हैं मेरे पास, मेरी जैसे ताकत है, शक्ति है मेरी, धीरज शांति, उस समय मैंने कुछ नहीं बोलना, साक्षी बोल रहा करके देखो। मैंने देखा है, अगर किसी व्यक्ति की गलती को आप उसे गलती महसूस कराना चाहते हो वाणी के द्वारा, नहीं होगी। आप उसको रियलाइज कराओ, गलती तो माने ना, सॉरी तो करे ना, देखो ना इतना बोल करके सॉरी तो करे कम से कम। क्या मायना, हम उसको गलती महसूस कराना चाहते हैं, ये नहीं, ये वास्तविधि नहीं है। बाबा की मुरली देखो, बाबा की स्टेज देखो और अपनी स्टेज हम देखें। एक बार बाबा ने मुरली में काम दिया, बच्चे अपनी स्थिति का चार्ट रखना, मैं अगली बार आऊंगा तो आपका चार्ट देखूंगा, खुश रखना अपने, खुश रहना। बाबा ने काम दे दिया, अगली बार मैं आके सबसे बच्चों से पूछूंगा, खुश रहना, अपना फेस ठीक रखना। बाबा काम देके चला गया, अगली बार आ गया, मुरली चलाई, बाबा ने पूछा ही नहीं। मैंने जो काम दिया था वो किया कि नहीं किया, बाबा ने पूछा ही नहीं। फिर जब बाबा जा रहा था, फिर बाबा कहता है, बाबा मुस्कराया सब की तरफ देख के, कहता है मैं मेरे पास आप सबका संकल्प पहुंच रहा है कि बाबा ने काम दिया था, पूछा नहीं। फिर बाबा, फिर देखिए आप सुनो, बाबा की बात सुनो। बाबा कहता है मैं जानता हूं आप लोग अंदर हंस रहे होंगे कि बाबा भूल गया, और ये भी आपको पता है कि बाबा भूलता तो है नहीं, तो बाबा भूला नहीं है, पर बाबा ने पूछा क्यों नहीं है, वो आप उत्तर सुनो बाबा का, आपको मजा आएगा। बाबा ने कहा, बाबा ने क्यों नहीं पूछा कि जो मैंने काम दिया वो किया या नहीं किया, बाबा ने कहा जिन्होंने किया वो तो खुश होंगे, हाँ, हाथ खड़ा करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो मुंह नीचा करेंगे। बाबा उन बच्चों का मुंह नीचा नहीं देख सकता। जिन्होंने नहीं किया उसके कारण बाबा नहीं पूछ रहा। देखिए क्या बाबा की स्टेज है। और हम लोग समझते हैं कि जिसने गलती की है वो माफी तो मांगे ना, हम तो उसको जो है एकदम उसको महसूस कराना चाहते हैं, अरे गलती हो गई वो खत्म हो गई, उसको दोबारा फिर क्यों स्टेज पर ला रहे हो, जब उसने गलती की हो तो की, और फिर उसको खड़ा कर रहे हो उसी स्टेज पे कि जो गलती की थी उसने, उसकी स्टेज को चेंज करना चाहिए ना। वास्तव में किसी को नेगेटिव स्टेज में रखना भी ये भी स्टेज नहीं है ना। बाबा तो किस स्टेज में हमें देखना चाहता, अच्छी स्टेज में देखना चाहता, सदा सम्मान में हमें रखना चाहता है बाबा, तो हमारी भी स्टेज ये वास्तव में होनी चाहिए किसी की। इसलिए बाबा ने कहा फॉरगिव, आगे लफ्ज का फॉरगेट, क्या मायना इसका, सिर्फ क्षमा नहीं करो, भूल भी। अगर आपने किसी को कहा मैंने आपको पहले भी माफ किया था, याद है आप वही हो, आप वही हो नहीं मैं वही हूं मैंने अंदर रखा हुआ है, मैंने बिंदी लगाई नहीं है, वो वही नहीं है मैं वही हूं, कि मुझे याद है कि आपने क्या किया था, वो तो शायद भूल भी गया, मुझे याद। इसलिए जो विघ्न का कारण, विघ्न जो है ये हमारी सोच है, ये कठिनाई पैदा करती है, जो नेगेटिविटी मेरे अंदर है बाबा ने कहा वो बाहर का रूप बनाती है, है मेरे अंदर, जैसे चश्मा पहन लो वैसा दिखाई देगा। जैसे हमारी बहनें सुनाती है ना, एक छोटी सी कहानी सुनाती है, एक भाई कहते आया किसी गांव में, किसी से पूछा यहां के लोग कैसे हैं, कहता आप कहां से आए हो, कहता मैं फलाने गांव से हूं, तुम्हारे लोग कैसे हैं, बड़े खराब घटिया, कहता यहां बहुत घटिया, चला जाए यहां से। दूसरा आया वो पूछता है यहां के लोग कैसे हैं, कहता आप कहां से आए हो, वहां से, बड़े अच्छे, कहता यहां बहुत अच्छे इस गांव में भी बहुत अच्छे है, क्यों वो अच्छा है इसलिए अच्छे, अगर मैं मेरे अंदर कठिनाई मेरे अंदर है, ये मेरी प्रॉब्लम है जो दूसरे में नजर आ रही है। आप देखिए बाबा की समझ देखिए, इसको गहराई समझो आप, मेरे में कठिनाई है, इसलिए निर्विघ्न बनने की जो स्टेज जिसे हम चाहते हैं कि विघ्न नहीं हो, उसमें हमें अपने अंदर परिवर्तन की जरूरत है। दुनिया को नहीं हम बदल सकते, किसी को नहीं बदल सकते, दूसरे को बदलना बड़ा मुश्किल है, हम आपको बताएं, सबसे सहज है हम अपने आप को बदल लें, बस सब नया नया लगेगा, अच्छा अच्छा लगेगा, बस ये स्टेज बन सकती है कि हमें किसी की कमी है पर मुझे नजर ना आए। हर एक अंदर गुण भी हैं और कमियां भी हैं, मुझे गुण नजर आते हैं नहीं कमी नजर आती, तो मेरे लिए विघ्न रहा, विघ्न खत्म हो गया, है ही नहीं विघ्न। स्व परिवर्तन से देखो बाबा ने कहा तुम बदलोगे जग बदलेगा, बदल जाएगा वो, और ये सच्चाई है, किसी के अंदर कितनी भी कमियां हैं, कितने भी अवगुण हैं, कितने भी उसके अंदर संस्कार हैं, अगर आप उसको अच्छा कहने लग जाओ, अच्छा देखने लग जाओ ना, तो उसमें फर्क आने लग जाएगा। जैसे हमारे अंदर आने लग गया बाबा रोज, इसलिए एक भाई कहता है बाबा रोज मुरली के पहले पहले क्या बोलता है, कहता रोज बाबा कहता मीठे बच्चे, कहता हम हैं तो है नहीं। मैंने कहा फिर बाबा क्या कहे, मीठे खट्टे बच्चे तो अच्छा लगेगा, बाबा तो मीठा ही कहेगा, और उसने मीठा कह कह के कह कह के कह कह करके, ऐसा नहीं बाबा जानता नहीं कि हम क्या है, ऐसा नहीं है कि बाबा जानता नहीं है कि हम क्या है, मगर उसके परिवर्तन की विधि यही है कि वो मीठा कह करके, क्योंकि हमारी ओरिजिनल स्टेज मीठी है ना, हमारा आदि अनादि स्वरूप मीठा है ना, हम वर्तमान में हैं, बाबा हमारा आदि अनादि स्वरूप देख रहा है, बाबा का तो यही तो बच्चे हैं और कौन है, क्योंकि बाबा तो हमें सतयुगी स्टेज भी हमारी देख रहा है, त्रेता वाली भी, द्वापर वाली भी, बाबा के पास तो सारी नॉलेज है ना कि हम क्या है, हम वर्तमान में खड़े हुए हैं, प्रेजेंट में। इसलिए जो बाबा की विधि है वो विधि अपनाओ, आप देखो अपना के देखो जो बाबा की विधि है कि हर एक को उसके आदि अनादि स्वरूप में देखो, वर्तमान में नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ। एक बार बाबा आए, हम आपको प्राइवेट बात सुनाते हैं, तब बाबा से एक एक व्यक्ति मिलता था, अव्यक्त बाबा जब शुरू शुरू में साकार बाबा के बाद हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठते थे अव्यक्त बाबा, और एक एक से बात करते थे, क्योंकि थोड़े ही होते थे, मुरली के टेप पर सामने चौकड़ी लगा के बैठ जाते थे, गुलजार दादी सामने बैठती थी, बाबा आ जाता था, एक एक से मिलता था, फिर चेंज हुआ सेंटर वे से, फिर हुआ जोन से, ऐसे चलते चलते अब दूर से ही दृष्टि देता है बाबा। तो जब एक एक से मिलता था तो बाबा से हर कोई प्राइवेट बात करता था, मगर प्राइवेट सबके सामने करनी होती थी, कोई प्राइवेट कमरा नहीं था। तो एक भाई कहता है, बाबा मेरी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है, जब मैं संग में आता हूं, कर्म में आता हूं ना, बाबा कहते हैं क्यों खराब हो जाती, कैसे देखते हो, कहते खास बहनों माताओं के कनेक्शन में रहता हूं, दफ्तर में मेरी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं रहती। तो बाबा कहते कैसे देखते हो, कहते जैसे देखा जाता है वैसे ही देखता हूं। देखो बाबा ने क्या कहा, उस बात जैसे देखा जाता है मतलब एक देखेंगे तो आंखों को देखेंगे ना, सामने शक्ल देखेंगे ना। देखो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा थोड़ा ऊपर देखा कर, देख तो जरूर लोगों को पता नहीं लगेगा कि तू किसको देख रहा है, तू आंख ना देख, आत्मा तेरी दृष्टि वृद्धि ठीक हो जाएगी। इतना बाबा ने उसका हाल दिया, हमारा ध्यान ना, मैंने देखा कितना मुरली का पहला लेसन है, कितने सालों से हम पढ़ रहे हैं रूस, आत्मक स्थिति, बच्चे आत्मक स्थिति होगी तो बाबा याद आएगा, शिव बाबा को याद करने भी तब आएगी जो पर आप सच्चाई से देखो आत्मक स्थिति हमारी कितनी रहती है। प्रैक्टिकली हमारे को देख रहे हैं, देखते क्या देख रहे हैं, ध्यान कहां जा रहा है, देखो। एक भाई हंसी में कहता है मुझे तो यहां सारे दर्जी नजर आते हैं, मैं क्या क्यों, कहता मोटा चौड़ा देखते रहते हैं, कपड़ा सिलाई कर रहा है उसने कहता किसी का वो दर्जी ने तो बपैस लेनी होती है ना, किसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कहता ऐसे शरीरों को देखते रहते हैं। क्या हमारी दृष्टिवृत्ति क्या है, कहां जाती, जिसे बाबा कहता है देखते हो भी ना देखो, वो क्या क्या चीज देखते हो ना देखो, ये देख, बाबा कहता मन ही को देखो, ये तो सांप है। अब ये इतनी छोटी सी बात है, ये कोई पुरुषार्थ करे, इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे नहीं आ सकती ये चलते फिरते अपनी। बाबा ने कहा आप एक मुरली चली है कि वृद्धि की विधि, आपकी प्रोग्रेस कैसे हो सकती है, उसका बाबा ने कहा चेकिंग एंड चेंज, हर वक्त अंदर चेकिंग चलती रही, हर वक्त मैं क्या देखा, किस तरफ ध्यान गया मेरा, बस इतनी सूक्ष्म अपना अटेंशन रखे कोई कि मेरा ध्यान किसकी तरफ जाता है, देह की तरफ जाता है, किसी की कमी की तरफ जाता है, और चीजों की तरफ जाता है, जो नहीं वो तो गलत बात है। कितना मेरे से सूक्ष्म भूलें श्रीमत के विरुद्ध हो रही हैं, हर वक्त कोई चेक करके देखे, इतना सूक्ष्म अपना चार्ट देखे कि मेरी से सूक्ष्म कितनी भूलें हो रही हैं, और ये जो सूक्ष्म भूलें हैं ये मेरी बुद्धि की स्टेज को प्योर नहीं होने देती है, और जितनी बुद्धि की स्टेज के अंदर प्योरिटी बढ़ेगी उतना कोई भी बात आएगी उसका हल फटाफट आ जाएगा, समस्या है ही नहीं। किसी बात का हल आ जाना और उस अनुसार चलना कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी बात का हल ना आना और गलत चलना वो समस्या बन गई, कठिनाई पैदा होगी। कठिनाई कहां से पैदा होती है? कठिनाई बाहर से नहीं आती है, हम लोगों से ही जो है कई दफा जो हमारा बोल, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारा कर्म, उसके अंदर नेगेटिविटी है, इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है। इसलिए बजाय इसके कि वो समाधान के हम उसको प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। बात कई दफा छोटी सी होती है वो बड़ी बन जाती है, क्यों बड़ी बन जाती है? हमारे कारण से। अगर हम थोड़ा सा साइलेंस में रहें, थोड़ा सा शांति में, कुछ नहीं, थोड़ा धीरज रखे, सहन करें, कुछ भी नहीं, और अगर बोल दिया, रिएक्शन कर दिया, इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि हम एक्टर हैं मगर हम एक्टर नहीं हैं। अगर कोई एक्टर रह के काम करे ना, समस्या है ही नहीं। हम एक्टर नहीं हैं, हम रिएक्टर हैं। हम ऑलवेज रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते ही नहीं है। जो दूसरे ने किया ना उसका रिएक्शन है हमें, तो रिएक्शन तो खराब होता है ना। दूसरे के बोल का, दूसरे के कर्म का वो हमें प्रभावित करता रहता है, और उस ढंग से हम फिर एक्शन करते हैं। हमारे एक्शन दूसरों से प्रभावित होके करते हैं, वो रॉन्ग है। हमें अपनी ओरिजिनलिटी पे करना है। अब रावण का पाठ रावण का है, राम का पाठ राम का है। रामायण क्यों सीरियल अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? कि रावण अपने जोश में बोलेगा। रावण अगर ढीला बोले तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रावण है। पर राम को कैसे बोलना है? राम कोई रावण से प्रभावित होकर अगर बोलेगा तो राम क्या हुआ फिर? राम की तब महिमा है कि वो अपने स्वरूप में टिका हुआ है, बस यही, विघ्न आएगा ही कोई नहीं, और उससे कूलनेस बनी रहेगी। हमारे मन बुद्धि में शांति धीरज बना रहेगा। हमारे मन बुद्धि और धीरज शांति बनी रहेगी तो कोई सामने चीज आएगी ना उसका हल फटाफट आ जाएगा। इसमें बोलना इसमें ना बोलना ठीक है, इसमें चुप रहना ठीक है, इसमें आराम से बैठे रहो ठीक है, वो बोल बोल के चला जाएगा बस यहां ही खत्म हो गई। एक्यूरेट हमारी मन बुद्धि, बुद्धि काम करती रहती, हर वक्त बुद्धि काम करती है, पर एक्यूरेट करे। अगर वो एक्यूरेट नहीं करेगी कठिनाई पैदा हो जाएगी। बात छोटी सी थी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमने एक्यूरेट उस वक्त बुद्धि ने काम नहीं किया, हमारी बुद्धि ने एक्यूरेट काम नहीं किया, इसलिए बात बढ़ गई। उसने एक लफ्ज बोला हम गर्म हो गए, बुद्धि हमारी अनकंट्रोल हो गई, उसने एक बोला हमने दो बोल दिए, समस्या उस अपने आप प्रॉब्लम और बढ़ गई। और अगर उस वक्त कुछ ना बोला, और बाबा तो इसे हाईएस्ट स्टेज कहता है, देखिए हाईएस्ट स्टेज क्या है, वो गलत बोले आपकी ऐसी स्टेज हो कि उसको अपनी गलती रियलाइज हो, ये कब हो सकता है? रियलाइज हम कराना चाहते हैं, हम अपने बोल और ढंग से बोल के रियलाइज कराना चाहते हैं। रियलाइजेशन कराने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको रियलाइजेशन की शक्ति दो अंदर में, ताकि उसको रियलाइजेशन आ जाए, अपनी स्थिति में स्थित रहो। इसलिए सार रूप में ये है कि निर्विघ्न बनाने की विधि जो है, हम जितना अपने स्वरूप में स्थित होते रहेंगे, अभ्यास है ये, बहुत जबरदस्त अटेंशन। और मैं आपको बताऊं ये समय पर काम नहीं करेगा, ये इसके लिए पहले से डिपॉजिट चाहिए। अगर मेरा पहले से काफी अभ्यास है अपने को धीरज और शांति में रखने का, ऐसे बैठे रहो। जितना हमें मुरली से प्यार है, जितना और चीजों से प्यार है, इतना हमारे याद में बाबा की शांति में बैठने से, ये डिपॉजिट्स हैं। अंदर आत्मा की शक्ति जो बढ़ती है, अंदर में मन और बुद्धि की शक्ति जो बढ़ती है, वो शांति से बस। देखो हर घंटे कौन सा गीत बजता है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, मानो शांत तनो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से। कुछ भी नहीं, आप देखो, आप ऐसी स्टेज अगर आपकी बनती चली जाए, जो समय पर संकल्प हो तब आ जाएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं। जानकी दादी कहती है हम सोचते ही नहीं है, समय पर संकल्प आ जाएगा जो करना है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा सोचते ही नहीं। सोचने की शक्ति को भी पावरफुल बनाते हैं, ज्यादा सोचने वाला कमजोर हो जाता है। बहुत समय पहले से प्लानिंग, बहुत समय पहले से, जैसे हम छोटे थे कहते कोसों मील दरिया, अपने कपड़े उतार के कंधे पे रख लिए, कोसों मील दरिया, कपड़े उतार दिए, अरे ये बात कब होनी है। जो बहुत समय की होनी उसका चिंतन, जो बहुत समय हो गई है उसका चिंतन, अरे जो आज करना है वो क्या करोगे फिर। जो पास्ट में रहता है और या फ्यूचर में रहता है वो प्रेजेंट में वेस्ट कर देता है, प्रेजेंट की वैल्यू नहीं उसको, वैल्यू तो प्रेजेंट की है ना। अब क्या कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे पिताजी मेरे दादाजी आपको नहीं पता क्या थे, वो कहते ठीक है पर आप कौन हो, कहते मैं दाल बेचता हूं। आप अपनी बात करो ना भाई, प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट की, पास्ट और फ्यूचर की बातों में कितना टाइम एनर्जी हमारी जाती है, कितना समय पहले से बैठे हैं योग में और 5 दिन के बाद रिजर्वेशन होगी कि नहीं होगी, ट्रेन का क्या होगा, अरे तू योग तो कर तू योग तो कर, जब जाना होगा चले जाएंगे, हो जाएगा। बहुत चिंतन एडवांस्ड मैंने देखा, कहीं है मैंने देखा, मैं योग में ऐसे कभी दृष्टि देता हूं, ऐसे देखता हूं, मैं तो उसके फेस की तरफ देखता हूं, पर कभी ध्यान जाता तो वो गिनती कर रहे होते हैं योग में बैठे हुए, मैं कहीं ये क्या कर रहा है, वो सारे काम योग में करते हैं, कहीं फ्री बैठे हुए हैं तो जैसे कि योग में ये सफर कर लो अपना टाइम, क्या क्या सोचते रहते, क्या जो करना है वो तो कर, जो करना है वो नहीं कर रहे और कुछ और ही कर रहे, बिजी है, मगर वो बिजी किस में है, इसलिए नहीं, ये देखने की जरूरत है, तब शक्ति बढ़ेगी ना। शक्ति आत्मा की तब बढ़ेगी जो मैं राइट वे में पुरुषार्थ करूंगा। इसलिए तो कहते हैं मैं दौड़ तो रहा हूं पर तू चेक तो कर। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि आप दौड़ तो रहे हो पर दिशा भी तो देखो ना। इसलिए हमारी बहनों ने उस दिन बड़ी अच्छी बात सुनाई, जैसे आपको भी सुनाया होगा, हमारी बहनें बड़ा अच्छा अच्छा चिंतन करती हैं, तो एक बहन बड़ी सुना रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कहते एक वो दौड़ रहे थे, कोई कुमार लोग दौड़ते जा रहे थे, तो उसमें साधु की कुटिया थी, उसने कहा ठहर भाई पानी तो पी जाओ, कहते नहीं नहीं हमें बड़ी जल्दी है, पानी नहीं पीना, जल्दी है, कहता पानी पी लो, कहां जा रहे हो, कहता दिल्ली, तुम सारी उम्र नहीं पहुंचोगे, क्यों, कहता दिल्ली इधर है।
तो दौड़ किधर? इसलिए आप पुरुषार्थ तो कर रहे हो, हम जा कहां रहे? बैठे योग में है, जा कहां रहे? योग में कर क्या रहे हैं? योग में केवल बैठना थोड़ा होता है, बैठना ही योग नहीं है। हाँ, बैठना, बैठ के योग लगाना अच्छी बात है, पर मेन तो हमारा संकल्प शक्ति है ना, मन बुद्धि है ना। हमारा योग मन और बुद्धि का है। मन कहाँ है? मन कहाँ है? इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, मैं तो कई दफा लोग जब जा रहे होते हैं ना, तब पीछे से आवाज करते हैं, काओ, कहता आ जाओ आगे हूं। मैं कह ऐसे कभी कभी अपने को योग में बैठे पूछ लिया कर भी, काओ ऊपर होगा नीचे, बैठ को बैटरी कराएगी, चलो ऊपर परम धाम सूक्ष्म वतन उतर। मैं किसी से पूछा क्या हुआ, कहता मैं तो यही था, वो बैंडी गई ऊपर, कहता हम तो यही थे। तो इसलिए अरे भाई ले जा तो आपको रहे थे, तो इंजन चलेगा डब्बे यही बैठे हुए। इसलिए ऐसा योग नहीं कर रहे, यहाँ भट्टी करने आए हो कि बहन जी ऊपर चले गए उनको कोई उठाए। मैंने देखा है योग पूरा हो गया, कहीं उठ गए योग लगा के चले गए, और कहीं उठाना पड़ता, उठ भाई योग पूरा हो गया, उसका योग पूरा ही नहीं हुआ, वो तो कहीं और चले गए, वो भी थे पर वो कहीं और चले गए। इसलिए नहीं, चेक करो, अगर आपने चेकिंग ना की ना तो आपका कांटा बदल जाएगा और आपका डिब्बा कहीं और चला जाएगा। फिर योग में ना ठीक योग लगाओ, नहीं योग में ना यथावा, इसलिए बाबा को कहना पड़ा यथार्थ योग। कहा योग में कनेक्शन नहीं मिला। एक बार हमारी दीदी चंद्रमणि थी, उसको एक भाई आके कहता है, दीदी आज मैं 2 घंटा योग लगाया। कहते अच्छा, ऐसे उसको दृष्टि दी, 2 घंटा? हाँ 2 घंटा। कहते कहती कनेक्शन मिला तो कनेक्शन मिला था, ये कहीं और ही ढूंढो और ही घूमता रहा। अगर बाबा का बाबा के पास नहीं गया, सूक्ष्म वतन नहीं गया, मूल वतन नहीं गया, तो फिर योग क्या है? बाकी योग है क्या? योग क्या है? इस 5 तत्वों से पार मन बुद्धि को ले जाना, तब हमारी बुद्धि के अंदर वो चीज आएगी जो निर्णय शक्ति ठीक काम करने, ऊपर से कनेक्शन से ठीक होगी ना। बाबा से हमारी बुद्धि सतोगुणी बनेगी, बाबा के संग से। जितना हमारी मन बुद्धि ऊपर हम रखेंगे उतनी प्योरिटी आएगी मन बुद्धि की, और जो कठिनाई समस्या सामने आएगी उसका समाधान तुरंत आ जाएगा, फटाफट समस्याएं खेल पाल लगेंगी, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हालों का पता लग गया हमें। जिस क्वेश्चन का हाल आ जाता है वो क्वेश्चन तो खेल पाल लगता है ना फिर। इसलिए हमारी मन बुद्धि एक्यूरेट काम करने लग जाए तो कोई समस्या है ही नहीं, कठिनाइयां है ही नहीं, मौज ही मौज है, कुछ भी नहीं है, कोई बात भी ऐसी कोई बात। बस जैसे हमने दादियों को देखा, हम चंडीगढ़ से फोन करेंगे, दादी ये बात है ऐसे कर लो, फोन पर ही ऐसे कर लो, तुरंत उनको एक्यूरेट डिसीजन आता है, क्योंकि बाबा के साथ बुद्धि रहती है ना। जिनका बुद्धि बाबा के साथ रहेगी उनकी बुद्धि में एक्यूरेट आएगा कि ये करना है, ये बोलना है, ये नहीं करना है। बस इसलिए कई दफा कठिनाइयां तो होती हैं, पर कठिनाइयों को हम बढ़ा लेते क्योंकि हमारी बुद्धि राइट काम नहीं करती है। बात तो छोटी होती है मगर बात ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए मुख्य बात है हमारी याद की क्वालिटी। याद में तो बैठते हैं मगर ये ठीक हो सकता है, मेरा पूरा विश्वास है। मैंने बहुत बुजुर्ग माताओं बहनों को भी एक्टिव बैठे देखा और बहुत कुमारों को ढीला बैठे देखा,
शरीर की कोई बात नहीं है, प्यार है अंदर में, बाबा है, प्यार है, वो जो है बहुत काम करते हैं। ठीक है, ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सोचने की जरूरत ही नहीं, नया हो या पुराना वो सेटल होना चाहिए बस, इसमें भी जाने की कोई जरूरत नहीं, सेटल होना चाहिए बस। हल्का निशानी ये है कि अगर हमारे अकाउंट सेटल हो रहे हैं नए या पुराने, तो हम खुश रहेंगे, लाइट रहेंगे, ये निशानी ये है। भारी पानी कुछ नहीं, ना योग में, ना ज्ञान में, ना चलने फिरने में, ना किसी चीज में, लाइट बस, भारी पानी। मन बुद्धि का हल्का होने से हल्का होते, ज्यादा सोचते ही नहीं, सोच रहे नथिंग न्यू, बस कुछ नहीं। इसलिए अपनी सोच को हल्का रखेंगे तो ये शरीर भी बहुत हल्का, भारी भारी कुछ नहीं है। सोच शरीर को भी भारी कर देती है, थकावट पैदा करती है। नींद उनको आती है जो मन बुद्धि से ज्यादा काम लेते हैं, ज्यादा सोचते हैं, इसलिए फिर थकावट होती है, मन बुद्धि थक जाता है शरीर में। ओके, सोनीपत का, हाँ वो तो है ही भाई, सोनीपत तो हमारी शुक्ला बहन जी कहते हैं। देखो मैंने, ये हमारी बहन जी है जिनका मुझे पहले दिन से ऑफर मिला हुआ है कि आप जब भी कहेंगे हम वहां पर जो सेवा मिलेगी वहां हम हाजिर हो जाएंगे। देखो, ताली बजाओ भाई, अपनापन है। चंडीगढ़ के लिए भी मैंने देखा इसे अपनापन है, वहां सब बहुत प्यार करते हैं। इसलिए सोनीपत तो हमारे जगदीश भाई का संकल्प है, और मैं वो भी देखता हूं कि उस आत्मा की भी शक्ति है, बाबा तो है ही है, जैसे वरदान है उस जगह को, वरदान है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन भी होता है, हम बंद करते हैं फिर चलता रहता काम, चलता रहता, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। अभी छोटा हाल 900 का था, फिर किसी ने कहा नहीं 1400 का बनाओ, ऊपर भी बना लो, बालकोनी अच्छी बन जाए, बन सकती है। हमने कहा बन रहा है तो बनाओ भाई, अभी वो शुरू कर दिया, चल रहा है। 1400 का ऑडिटोरियम बन जाएगा, 3 हाल बन गए। जब ये सड़क जीटी रोड से सड़क नहीं मिली थी तब हमारा काम रुका हुआ था, फिर पंचायत वालों से रेजोल्यूशन पास कराया कि भाई ये हमें सड़क दे दो, उन्होंने दे पाया, रेजोल्यूशन पास कर दिया। ऊपर जी चंडीगढ़ से यस कराओ, चंडीगढ़ फाइल की तो कहते हैं पंचायत वालों को, प्राइवेट संस्था को कोई सड़क दी जाती है, पैसे पर दो, फ्री क्यों दिया है? फाइल वापस आ गई, वो सड़क तो उन्होंने दे दी थी, पर वो तो बाद में फाइल भेजी थी, हमने उस पर थोड़ा बहुत मट्टी वट्टी डलवा के काम शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन हमारा हो रहा, चलो शुरू हो गया। अब वो कच्ची सड़क थी। देखिए ड्रामा में, मैं कहता हूं कैसे बाबा की सूक्ष्म और ड्रामा की मदद रहती है। हमें मन बुद्धि भी नहीं था कि सोनीपत को उन्होंने कारपोरेशन बना दिया गवर्नमेंट ने, और सारी पंचायतें खत्म कर दी, वो पंचायत ही खत्म हो गई जिसने कहा था। और अब जो नई निगम आई तो उसका जो कमिश्नर था वो हमारा वाकफ कार था, वो कहता कोई बात नहीं ये सड़क बनाएंगे। उसने कहा कि एक हमारी स्कीम है 1/10 आप दे दो हम, मैं कहा कोई कहता 10 लाख खर्च कर देते हैं, 1 लाख आप दे दो, मैं कहा दे दो। तो पिछली बार जब दादी गई थी गेट, इंडिया गेट से, तब उससे तो सड़क उन्होंने और डोड़ी डाल के और सीमेंट रेता डाल के बना दी थी, कच्ची पर पक्की बना दी थी, दादी की गाड़ी फर्स्ट क्लास चली गई। अब 6 महीने साल में वो रोड़िया फिर शुरू हो गई, पक्की तो नहीं थी ना। फिर वो कहता है जी मैं ये नहीं कर सकता, ये तो 28 लाख का प्रोजेक्ट है। उतने में देखा तो नया कमिश्नर आ गया, नया कमिश्नर ऐसा आया जो बाबा के बच्चे की तरह बुदबुन होके गया हुआ है, कई जगह एसडीएम रहा हुआ है। उसको जब बुलाया उसके मोबाइल में बहनों की फोटो, मैंने टोली वहां खाई, मैंने टोली वहां खाई। मैंने कहा ये सड़क, कहता ये तो मेरा काम है, मेरे अंदर अथॉरिटी। हमने कहा मिनिस्टर को कहने नहीं, किसी को नहीं कहना। उसने फाइल पे रात को 10 बजे फोन किया कि आज आपकी 28 लाख की फाइल फाइनल कर दी, हो गया। जब उस मिनिस्टर को पता लगा, सोनीपत वाली को, वो मिनिस्टर को पता लगा कि ये तो प्रोजेक्ट डिगो वाले बना रहे हैं, तो कहते हैं जब शुरू करो ना मुझे बनाना। और उसने एक स्टोन भी बना दिया पत्थर, और उस पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, पत्थर भी उन्होंने बनाया है कि 28 लाख का प्रोजेक्ट जीटी रोड से ब्रह्मा कुमारी आश्रम तक सड़क का आज फाउंडेशन हो रहा है। वो फाउंडेशन करने आ गई, अब वो सड़क बन रही है, आधी बन गई है, काम चालू है। कैसे काम होता है अब ये पता नहीं, सच्ची बात है। जिसको वो कहते थे प्राइवेट संस्था को क्यों जगह दी है, अब वो प्राइवेट संस्था का नाम है कि उसके लिए सड़क बना रहे हैं गवर्नमेंट के पैसे से। समय पर कैसे काम होता है। धीरज और शांति रखो, मैंने कहा ना, देखते रहो साक्षी होके कौन किस समय पर। आज बाबा के इतने संबंध संपर्क वाले और बाबा के बच्चे हैं जो अपना कार्य करने लगते। आज ही अभी अभी न्यूज मिली कि प्राइम मिनिस्टर चंडीगढ़, इसलिए मैं जाऊंगा एक दो दिन में, चंडीगढ़ आ रहा है। तो हमने कहा भी प्राइम मिनिस्टर के साथ हम लोग, बीके को भी तो रखो किसी को। आप लोगों ने संस्था का नाम लिया है, 6 संस्थाओं का, तो ब्रह्मा कुमारी इसको भी बीके के साथ रखो। तो वहां से फोन आया, एक तो रखा हुआ है ना आपका शिवानी बहन, चंडीगढ़ में भी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ कहते हैं, उसका नाम है। फिर मैंने दिल्ली फोन किया शिवानी बहन को, मैं कहा बहन जी आपका तो वहां नाम है। कहती हां सुना है तो है, लेटर तो आया नहीं। तो फिर मैंने उनको चंडीगढ़ वालों को कहा, मैं कभी लेटर नहीं कहता, भेजा हुआ है। फिर आधे घंटे में शिवानी बहन का फोन आ गया कि मैं सीरी फोर्ट में उस दिन प्रोग्राम है 20 का, वो पूरा करके रात को 11:30-12 चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगी, सवेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना है, वो भी जरूरी है, सेवा है। ऐसे काम हो रहे जैसे कि अपने आप, नहीं तो आपने सोचा ही नहीं था कि भाई ये भी होगा, अपने आप वो कह रहे हैं। ये तो शिवानी बहन पूना थी नहीं, तो उन्होंने तो पूरा जैसे रामदेव को 2 घंटे का सेशन दिया चंडीगढ़ में, कहते थे शिवानी बहन आए तो हम 2 घंटे का पूरा सेशन दे देंगे, पर शिवानी बहन कहती मैं बिजी हूं। पर अभी इस प्रोग्राम में फिर 21 तारीख को चंडीगढ़ पहुंच रही है, तो ये भी ड्रामा का सीन देखते चलो आगे क्या क्या बाबा दिखाता है। वो तो जो बाबा ने कहा हुआ प्रत्यक्षता तो होनी होनी है, बाबा के बच्चों की प्रत्यक्षता, क्योंकि ऐसे बाबा के जैसे आप, ऐसा आप देखो जो मैंने आप लोगों को बात सुनाई, इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ कौन करता है आज की दुनिया में, कोई करता है इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ जो बाबा हम बच्चों से करवाता है, ऐसा कोई करता ही नहीं है। गलती किसी की नहीं है, हमारी गलती है, बदले की भावना है ही नहीं। कोई कुछ भी कहता है, अच्छा ठीक है मेरा ही हिसाब किताब। दुनिया में ऐसा कौन है ऐसा। और इसलिए कहता है आप अंदर सूक्ष्म है, एक मिनट और पूरा करते हो, सूक्ष्म राज देखो क्या है। देखो सूक्ष्म राज आप समझो अंदर गहराई, कि बाबा जो है बाबा है और उसके सारे बच्चे हैं। आज आप देखो घर में भी 2 बच्चे हो ना, तो एक बच्चा दूसरे को पीट देवे, बाप उसको नहीं कहेगा तू भी पीट इसको, कभी नहीं कहेगा, कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो नहीं कहेगा क्योंकि दोनों उसके बच्चे हैं। ऐसे शिव बाबा है। अगर आप मेरे से कोई उल्टा काम करता है तो बाबा कहता है ना उसको तो तू ना कर, तू उसको प्यार कर। कारण क्या है कि वो उसका बच्चा है। गलत करने वाला भी बाबा का बच्चा है और गलत करने वाले को भी बाबा प्यार करता है तो संतान तो उसकी है ना। ये है सूक्ष्म राज। जैसे बाबा सोच रहा है आत्माओं के लिए, ऐसे हम सोचने लग जाएं बस, अपना ही तो है। गलत करने वाला भी कौन है। अब अपने भाई के लिए, अपने भाई बहन के लिए तो लोग वैसे प्रोटेक्ट करते ही करते हैं, दुनिया में भी करते हैं। किसी के मां बाप को आप जाके कहो सुना तेरा बच्चा बड़ा खराब है, कहता लोग झूठ बोलते हैं, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। खराब को भी कहेगा बिल्कुल ठीक, क्योंकि प्यार है ना। जहां प्यार होता है वहां प्रोटेक्ट किया ही जाता है, अपनापन समझा जाता है। ये हद में हम जानते हैं, बाबा हमें बेहद में ले जा रहा है, बस और कुछ नहीं। हद में हमारे अंदर संस्कार तो दुनिया में है, हमारे अंदर बाबा बेहद मिल जाए। सब अपने हैं, सब अपने, गलत करने वाले भी अपने। इतनी ऊंची स्टेज कौन दुनिया में बना सकता है। ओके, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। एक हाथ की ताली अच्छी तरह बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सब निर्विघ्न बन के दिखाएंगे। 2 मिनट साइलेंस करेंगे।
सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। Shit up.